हरि जया कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा गणचारी जय कुंज बिहारी। जय हो जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
सब लोग प्रणाम करें।
जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री रामानंद राय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरियस सिमेंट बॉडीज ऑल ग्लोरियस सिमेंट बॉडीज ऑल ग्लोरियस सिमेंट बॉडीज ऑल ग्लोरियस श्री गुरु एंड गौरांगा।
बात नहीं आपस में कोई बात ना करें। सब लोग और आगे आइए। सब लोग कृपा करके आगे आइए और सब पंखे बंद कर दीजिए। हरि बोल। जितने पंखे चल रहे हैं सब पंखे बंद कर दीजिए। पंखे सब बंद कर दो। कौन बातें कर रहा है? इनको इशारा करके चुप रहने का इशारा करिए सबको। कोई बातें नहीं करेगा आपस में। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं। ये मंदिर है, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है या सड़क नहीं है। आपस में कोई बातें नहीं करेगा, बिल्कुल शांत रहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है। कौन बातें कर रहा है? बिल्कुल शांत, सबको इशारा करिए चुप रहने का। जिनको बातें करना है बाहर जा सकते हैं, ये जगह बातें करने के लिए नहीं है। आज बहुत ही विशेष पवित्र दिन है, एक घंटे को बांध दीजिए, घंटा भी नहीं बजाएगा। आज बहुत ही विशेष पवित्र दिन है। क्या है? आज क्या है? पुण्यतिथि। किसकी पुण्यतिथि? पुण्यतिथि आज क्या है? हमारे वैष्णव कैलेंडर में जो लिखा है वो सबके लिए नहीं है, हमारे लिए। हमारे वैष्णव कैलेंडर में आज विशेष दिन है, जो कि हमारे लिए है, वो पता होना चाहिए। क्या है? रामानंद राय का तिरुभाव दिवस है। रामानंद राय का तिरुभाव दिवस है। उनका बहुत ही विस्तृत चरित्र चैतन्य चरितामृत में है। इतना समय भी नहीं है कि हम उसका वर्णन कर सकें, तो जितना अधिक हो सकेगा हम सुनेंगे उनके बारे में। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत घनिष्ठ संगी, घनिष्ठ संगी। चैतन्य महाप्रभु आप लोग जानते हैं कृष्ण है राधा भाव में। कृष्ण ने राधा भाव का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया, और राधा रानी की साथ जो दो सखियां हैं विशेष, कौन है? ललिता विशाखा। उनमें से विशाखा नाम की जो सखी है वो रामानंद राय है। सोचिए कितना विशेष दिन है। विशाखा सखी ने अवतार लिया पुरुष के रूप में, राधा रानी ने भी अवतार लिया पुरुष के रूप में। कौन है राधा रानी? गदाधर पंडित। और विशाखा सखी कौन है? रामानंद राय, है ना। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, और हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं आता है, इसलिए साल में केवल एक ही दिन होता है उनको याद करने का। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से सुने इनका चरित्र। ये घटना उस समय की है जब भगवान चैतन्य दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं। जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बहुत विशेष संगी हैं। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, बहुत लंबी यात्रा है, आप सोचिए बहुत लंबी यात्रा है, क्योंकि ये यात्रा पैदल पैदल चलना है। सोचिए पूरब भारत के पूरब में जगन्नाथपुरी है, और दक्षिण भारत, पूरा दक्षिण भारत की यात्रा करना है ना, और पैदल, कितना बड़ा कार्य। अभी तो कोई सोच भी नहीं सकता है पैदल यात्रा करने का। 6 साल चैतन्य महाप्रभु ने 6 साल में दक्षिण भारत की यात्रा की और जगन्नाथपुरी वापस पहुंचे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से केवल एक ही प्रार्थना की। आप सोचिए वो क्या प्रार्थना है। दक्षिण भारत तो कितना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि दक्षिण भारत की यात्रा में आप एक व्यक्ति से जरूर मिलना, बाकी आप किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे है ना, वो आप जाने, लेकिन एक व्यक्ति से आप जरूर मिलना, ये मेरी बहुत प्रार्थना है। विद्यानगर में रामानंद राय वहां के मंत्री हैं, उनसे आप जरूर मिलना। चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया कि मैं उनसे जरूर मिलूंगा। तो विद्यानगर में भगवान पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु किस रूप में है? सन्यासी के रूप में है। गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे, नदी में स्नान किया और स्नान घाट से कुछ दूर गए और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे। अकेले सन्यासी हैं चैतन्य महाप्रभु, अकेले नहीं है, उनके साथ में एक और भी व्यक्ति है, लेकिन उसकी कुछ विशेष रुचि नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के साथ में है लेकिन ज़्यादा उसका भगवान से प्रेम नहीं है, वो सेवा के लिए साथ में चल रहा है लेकिन बहुत उसकी भगवान के प्रति आसक्ति या भाव ये सब कुछ नहीं है, साथ में चल रहा है ना। तो चैतन्य महाप्रभु एक प्रकार से बिल्कुल अकेले ही हैं। तो गोदावरी नदी के तट पर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे। घट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, बसे प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। उसी समय बाजे गाजे के साथ पालकी पर चढ़कर रामानंद राय वहां पर स्नान करने आए। देखो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में है, अकेले हैं, वे स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, कोई नहीं जानता। और रामानंद राय वहाँ के मंत्री हैं, मंत्री राजा का मंत्री, जहाँ जाए वहाँ हजारों हजारों लोगों की भीड़ लगती है। तो रामानंद राय आए गोदावरी में स्नान करने के लिए, तो कैसे आए? पालकी पर चढ़ करके आए, पालकी पर चढ़ करके आए, क्यों? मंत्री हैं और बाजे खूब बाजे बज रहे हैं, उनकी स्नान यात्रा है ना। हेने काले दो लय चढ़े रामानंद राय, स्नान करे बारे अला बाजना बजाए। रामानंद राय के साथ अनेक वैदिक ब्राह्मण थे और रामानंद राय ने वैदिक रीति से स्नान किया और अपने पितरों को तर्पण किया। चैतन्य महाप्रभु जान गए जो व्यक्ति नदी में स्नान करने आया है वही कौन है? रामानंद राय है। महाप्रभु उनसे मिलने के लिए इतने इच्छुक हुए, उनका मन दौड़ने लगा। चैतन्य महाप्रभु चाहते कि दौड़ करके आलिंगन कर लूं, लेकिन सन्यासी हैं है? और बहुत लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने को रोका, अपने मन को रोका, उनका मन चाहे था कि तुरंत ही दौड़ूं है ना, आलिंगन करूं। प्रभु तारे देखे जान ले राम राय, तारे मिले ते प्रभु मन उठे थाए। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु का मन दौड़ रहा था लेकिन वे धैर्य पूर्वक बैठे रहे, अपने मन को बस में किया। उनके मन की बहुत इच्छा है कि दौड़ करके जाऊं है ना, लेकिन बैठे रहे। तब रामानंद राय इस अपूर्व सन्यासी को देख करके उनसे मिलने आए। रामानंद राय ने देखा अपूर्व, यानी ऐसा सन्यासी जिसका दर्शन कभी हुआ नहीं। तो रामानंद राय मिलने के लिए आए। रामानंद राय हालांकि मंत्री हैं लेकिन गृहस्थ हैं और वैदिक शिष्टाचार जानते हैं कि मंत्री कोई गृहस्थ जो है चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो लेकिन सन्यासी हमेशा उससे ऊपर होता है। तो वे आए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के पास और सन्यासी होने के कारण भगवान नहीं जा रहे हैं, मर्यादा में बंधे हैं कि सन्यासी कैसे जाए किसी गृहस्थ के पास। सन्यासी के लिए लज्जा की बात है, सन्यासी के लिए लज्जा की बात है कि गृहस्थ के पास जाए, लेकिन गृहस्थ के लिए ये प्रशंसा की बात है कि सन्यासी के पास आए। तो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के पास आए। तथापि धैर्य धरे प्रभु रहिला बसिया, रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया। रामानंद राय ने देखा 100 सूर्यों के समान तेजस्वी सन्यासी, साक्षात भगवान है। कैसे हैं? एक ऐसा सन्यासी है जो 100 सूर्यों के समान तेजस्वी, केसरी वस्त्र धारण किए है, शरीर विशाल है, सुदृढ़ है, और आंखें कमल के पंखुड़ियों जैसी है। सूर्य सत सम कांति अरुण बसन, सुबल ते प्रकंड कमल लोचन। जब रामानंद राय ने इस अद्भुत सन्यासी को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत भूमि पर दंडवत गिरकर उन्होंने सादर नमस्कार किया। तुरंत जमीन में कैसे गिरे? डंडे के समान सन्यासी को देख करके सादर नमस्कार किया। ये नहीं सोचा कि देखो मैं राजा का मंत्री हूँ, हजारों ब्राह्मण मेरे लिए मंत्र पाठ कर रहे हैं, ये नहीं सोचा। क्या सोचा? सन्यासी बहुत तेजस्वी सन्यासी हैं, जमीन पर डंडे के समान गिरे। अभी आजकल कौन करता है ऐसा? बड़े बड़े नेता चलते हैं, उनके चारों तरफ घेरे रहते हैं लोग, हैं तो कहाँ करते हैं किसी को सम्मान, हैं ऐसा सम्मान कहाँ करता कोई, है ना। और महाप्रभु खड़े हो गए, चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए और रामानंद राय से उठने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने के लिए बहुत उत्सुक थे कि कब खड़े हो तो मैं आलिंगन करूं, लेकिन वो देर लगा रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा मतलब अधीर हो रहे हैं भगवान कि कब उठे और मैं आलिंगन करूं इसका, उठ नहीं रहे है ना। उठे प्रभु कहे उठे कहा कृष्ण कृष्ण, तारे आलिंगित प्रभु हृदय सतृष्ण। तब महाप्रभु ने पूछा क्या आप रामानंद राय हैं, क्या आप रामानंद राय हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया हाँ मैं आपका तुच्छ दास हूं और शूद्र अधम, ये परिचय दिया। ये नहीं कहा कि मैं मंत्री हूं, राजा का मंत्री हूं, देखो मेरी शान देखो, ऐसे नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? मैं आपका तुच्छ दास हूं, शूद्र में अधम। तथापि पूछ ले तो मेरा है रामानंद, ते हो कहे सही हम दास शूद्र मंद। तब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय का दृढ़ता से आलिंगन किया, आलिंगन किया, क्योंकि भगवान को दीनता प्रिय है, अभिमान से नफरत है। भगवान को दीनता प्रिय है, अभिमान से नफरत है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत तुच्छ आपका दास हूं, अधम शूद्र हूं। तो भगवान ने क्या किया? दृढ़ आलिंगन किया। इस तरह प्रभु और दास दोनों प्रेम आवेश में बेहोश जैसे हो गए। एक महाप्रभु है और दूसरा महादास है। ये महाप्रभु हैं, है बड़े मालिक हैं, और वो महादास हैं। दोनों एक दूसरे के प्रेम में क्या हो गए? अचेत, अचेत हो गए। तबे तारे कैला प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमावेश प्रभु वृत्त देव अचेतन। दोनों में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया, दोनों ने आलिंगन किया और दोनों भूमि पर गिर गए, दोनों के दोनों गिर गए प्रेम में। अब देखो कैसा दृश्य उत्पन्न हो गया, कितने लोग देख रहे हैं, है ना। स्वाभाविक के प्रेम में दुहार उदय कारीला, दुआ आलिंगिया दो भूमि ते पड़ीला। क्यों? विशाखा है, ये कृष्ण है ना, राधा रानी की सखी विशाखा है, ये कृष्ण है ना। तो जन्म जन्म का प्रेम है, है? तो दोनों एक दूसरे के प्रेम में बेहोश हो गए। एक दूसरे का आलिंगन करते समय स्तंभ शरीर कैसा हो गया? अकड़ गया, क्या हो गया, शरीर अकड़ गया दोनों का, पसीना आया, अश्रु आए, कंपन हुआ, पुलकावली आई है, और मुखों से दोनों के कृष्ण कृष्ण शब्द रुक रुक करके निकल रहे हैं। दोनों के दोनों कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं लेकिन रुक रुक करके बोल पा रहे हैं, लगातार नहीं बोल पा रहे हैं, गदगद हो गया कंठ, गदगद हो गया। स्तंभ स्वेद अश्रु कंप पुलक वर्ण है, तुम्हारे मुख ते सुनि गदगद कृष्ण वर्ण है। जब कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों ने ये देखा, ऐसा प्रेम उनके लिए तो कल्पना कल्पना से बाहर, कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा प्रेम हो सकता है किसी का किसी के साथ, जीवन में कभी देखा नहीं, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ ऐसा प्रेम क्या हो सकता है। तो उनको तो जीवन में पहली बार देखने को मिला कि ऐसा भी किसी का किसी के साथ प्रेम हो सकता है, और वो भी कैसा जो कभी नहीं मिले एक दूसरे से हैं। सारे ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए हैं कि क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है, आश्चर्यचकित हो गए और विचार करने लगे हैं कि अरे ये कैसे ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। देखिए ब्राह्मण गण हैला चमत्कार है, वेद के ब्राह्मण सब कार्य ने विचार है। ब्राह्मण सोचा सन्यासी 100 सूर्यों के समान तेजस्वी सन्यासी, ये सन्यासी कैसा है, 100 सूर्यों के समान तेजस्वी सन्यासी है और शूद्र का लेखन करके रो रहा है। आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य, जिसका तेज कैसा हो 100 सूर्यों के समान और एक शूद्र का लिंगन करके रो रहा है, इतना प्रेम मतलब सोच भी नहीं सकते। जिसके शरीर में 100 सूर्यों जैसा तेज हो वो कैसा होता है, ऐसे होता है ना। लेकिन यहां तो वो इतना तेजस्वी सन्यासी, एक शूद्र जो है मनुष्य समाज में शूद्र सबसे नीचे है और ब्राह्मण से भी ऊपर सन्यासी है, मनुष्य समाज में सन्यासी सबसे ऊपर है, ब्राह्मण का भी गुरु है और शूद्र सबसे नीचे है। तो सबसे ऊपर का व्यक्ति सन्यासी, सबसे नीचे की व्यक्ति शूद्र से क्या कर रहा है, इतना प्रेम कर रहा है कि आलिंगन करके रो रहा है। इतनी महिमा सन्यासी की, इतनी महिमा है, एक शूद्र का आलिंगन करके रोए, आश्चर्य। यही तो सन्यासी देखी ब्रह्म समय शूद्र आलिंगी यज्ञ ने करे ने क्रंदन। फिर रामानंद राय के लिए सोचा, ये तो गवर्नर हैं, मंत्री हैं, इतने बड़े हैं है? और बहुत बड़े पंडित हैं, सन्यासी का स्पर्श करके ये पागल की तरह क्यों व्याकुल हो गए। रामानंद राय की स्थिति अपनी जगह बहुत ऊंची है, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में बहुत ऊंचे हैं, लेकिन रामानंद राय गृहस्थ हैं और चाहे शूद्र क्यों ना हो लेकिन राजा के मंत्री के रूप में उनकी स्थिति बहुत ऊंची है। तो अपने अपनी जगह पर दोनों ही क्या है, एक दूसरे से बढ़कर के हैं है? तो जितना महत्व तो रामानंद राय का है मंत्री के रूप में, उतना महत्व तो सन्यासी का नहीं होता। तो ये मंत्री होकर के एक सन्यासी का स्पर्श करके पागल हो गए, ये कैसे हो गए। मंत्री हजारों लाखों लोग जो है उसके अधीन रहते हैं ना। यही महाराज महापंडित गंभीर है, सन्यासी स्पर्श से मत है ला अस्थिर है। जब सारे ब्राह्मण दोनों के बारे में सोच रहे थे कि दोनों एक दूसरे से बढ़ करके हैं, एक दूसरे से बहुत ऊंचे हैं, रामानंद राय चैतन्य महापुरुष से बहुत ऊंचे हैं, अगर एक दृष्टि देखा जाए तो ये पागल हो गए इनसे मिलकर के, और चैतन्य महाप्रभु अपनी जगह पर बहुत ऊंचे हैं रामानंद राय की तुलना में, ये पागल हो गए इनका आलिंगन करके, दोनों के दोनों पागल हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि दोनों के दोनों पागल हैं, हैं? यही मत विप्रगण भावे माने मन विजाती है लोके देखे प्रभु कैला संवरण। इन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भाई यहाँ तो विजाती लोग हैं, दूसरे प्रकार के लोग हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने भाव को रोक लिया। ऐसे लोगों के बीच में क्या होता है, बड़ी अस्वाभाविक स्थिति पैदा हो जाती है, अजीब स्थिति, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने भाव को दबा लिया। जब दोनों के मन स्थिर हो गए, दोनों बैठ गए, चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर इस प्रकार कहना शुरू किया। अब हंस करके बोले चैतन्य महाप्रभु, और देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, हजारों ब्राह्मण देख रहे हैं और पब्लिक भी है, सब देख रहे हैं, हैं? तो चैतन्य महाप्रभु हंस करके बोले, क्या बोले, सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके गुण मुझे बताए हैं, हाँ, उन्होंने मुझसे बहुत आपका गुणगान किया है कि मैं आपसे जरूर मिलूं, निस्संदेह मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया हूँ, अच्छा हो कि बिना प्रयास के आपसे यहाँ भेंट हो गई। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैंने कुछ प्रयास नहीं किया, आप मिल गए, किसी से पूछताछ भी नहीं करनी पड़ी कि रामानंद राय मिल गए ना। तो मामेली बारे मोर एथा आगमन भाल हिला अनाया से पाइलो दर्शन। रामानंद राय ने उत्तर दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपने सेवक, अपना सेवक मानते हैं, बहुत विनम्रता है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य तो बहुत ऊंची स्थिति बताई थी रामानंद राय की, बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन रामानंद राय क्या कह रहे हैं कि मुझे अपना सेवक मानते हैं, हैं, और मेरा हित करने के लिए सचेत रहते हैं, मेरा ही भला उन्होंने करने के लिए आपसे कहा था कि आप मुझसे मिले। राय काय सार्वभौम कार्य वृत्ति ज्ञान परोक्ष है मोर ही हित है सावधान। उनकी कृपा से मुझे यहाँ आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। किसकी कृपा से, सार्वभौम की कृपा से। मैं मानता हूं आज मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया है। आज क्या हुआ, मेरा मनुष्य जीवन सफल हुआ है आपका दर्शन प्राप्त करके। तारे कृपा पाई नो तो मारे दर्शन आज ही सफल है मोरे मनुष्य जन्म। मैं देख रहा हूं कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य पर विशेष कृपा की, अतएव आपने मेरा स्पर्श किया है। मैं तो लायक नहीं हूं, हाँ, आपके स्पर्श के लायक नहीं हूँ, आपने मेरा स्पर्श किया है, क्यों, सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर आपकी बहुत कृपा है, इसलिए एक कारण यही है, हाँ, मैं तो बहुत अस्पृश्य हूँ, हाँ, लेकिन आपने मेरा स्पर्श किया, क्यों, उनके ऊपर कृपा है आपकी, यद्यपि मैं अस्पृश्य हूँ लेकिन आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं और मैं एक सरकारी नौकर हूँ, शूद्रों में भी सबसे नीच हो। कहा तो मैं साक्षात ईश्वर नारायण का मैं राजसे विषयी शूद्रधम। आपको वैदिक आदेशों का भी भय नहीं, वेदों में आदेश दिया गया है कि शूद्र से सन्यासी को ऐसे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आपको तो डर नहीं है वैदिक आदेशों का, आप वैदिक आदेशों का भी उल्लंघन करते हैं, हैं, हैं? वैदिक आदेश है कि सन्यासी को शूद्र का संग नहीं करना चाहिए, वेदों का आदेश है, आप सन्यासी और मैं शूद्र हूं, आपको मेरा संग नहीं करना चाहिए, वैदिक आदेश है, हैं? किंतु आपने मेरा स्पर्श करने में कोई घृणा नहीं की, आपका कितना बड़ा गुण है कि आपने नहीं सोचा कि वेदों में मना किया गया है, आपने फिर भी मेरा स्पर्श किया है। मोर स्पर्श से ना कारी ले घृणा वेद भय मोर दर्शन तो माँ वेदे निषेध है। आप स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव आपके रहस्य को कोई नहीं समझ सकता, आपकी कृपा है कि आप मेरा स्पर्श कर रहे हैं, ये तभी वेदों में इसकी अनुमति नहीं है। तुम्हारे कृपा है तो माए कराय निंद कर्म साक्षात ईश्वर तुम्ही के जाने तुमार मर्म। ये आपकी कृपा ही तुमसे निंदनीय कार्य कराती है। निंदा की बात है आपके लिए कि आप मेरे स्पर्श कर रहे हैं, इन आपकी कृपा है आपको ऐसे काम कराती है। गलत काम भी आप करते हैं क्योंकि आपकी कृपा होती है तो गलत काम भी करते हैं। आप मेरा स्पर्श कर रहे हैं, गलत काम है, लेकिन आप की कृपा आपसे ऐसे गलत काम भी कराती है। आप यहाँ मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। आप इतने दयालु हैं कि सभी पतितों को केवल आप ही उबार सकते हैं। और पतित कहाँ जाएंगे? बातें नहीं, बातें नहीं, आपसे बोल रहा हूँ आपसे। इनको होश नहीं, हरी बोल, बातें नहीं करिए, आपस में बातें मत करिए। सारे संत पुरुषों का ये कार्य है पतितों का उद्धार करना, इसलिए वे लोगों के घरों में जाते हैं, यद्यपि उनका कोई अपना कार्य नहीं होता है, संतों का कार्य। हे प्रभु, कभी कभी बड़े से बड़े संत पुरुष भी गृहस्थों के घर जाते हैं, यद्यपि वे गृहस्थ तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं। जब कोई संत उनके घर जाता है तो ही समझना चाहिए कि गृहस्थों को लाभ देने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं होता है संतों का। किसी घर में जाए तो केवल लाभ देते हैं। मेरे साथ के ब्राह्मणों को मिलाकर लगभग 1000 व्यक्ति हैं और सबके हृदय आपके दर्शन से द्रवीभूत हो गए हैं। आपका दर्शन करके सब 1000 आदमी हैं मेरे साथ में, है ना। आमार संगे ब्राह्मण आदि सहस्त्र के जन तुम्हारे दर्शन समर्द्रविभूत मन। मैं हर व्यक्ति को कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए देख रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर भाव से पुलकित है, हर एक की आंखों में आंसू आ गए हैं आपका दर्शन करके। मेरे संगियों में 1000 आदमियों को भी क्या है, आंसू आ रहे हैं आपका दर्शन करके। कृष्ण कृष्ण नाम है सोने साबार बदने साबार अंग पोल के अश्रु नयने। हे प्रभु, आप अपने शारीरिक लक्षणों और स्वभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। सामान्य जीवों में ऐसे लक्षणों का मिलना असंभव है। आपके शरीर के लक्षण ही हैं, भगवान के लक्षण हैं। महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा। अब देखो, रामानंद राय तो भगवान से कह रहे हैं, है? आपसे बोल रहा हूँ, बातें नहीं कर रहे हैं। बातें करना बाहर जाइए, यहाँ अच्छा नहीं लगता ना बातें करना आपस में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कहा कि आप साक्षात भगवान हैं, लेकिन भगवान देखो उनकी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? उत्तर दिया, आप सर्वोच्च भक्तों के शिरोमणि हैं, आपके दर्शन से सबके हृदय द्रवित हो उठा है। यद्यपि मैं मायावादी सन्यासी अभक्त हूँ, भगवान अपने को क्या कह रहे हैं, मैं मायावादी सन्यासी हूँ, अभक्त हूँ, किंतु आपका स्पर्श पाने मात्र से मैं कृष्ण प्रेम के सागर में तैर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं आपके स्पर्श पाने से, भगवान अपने को छिपा रहे हैं, है? भगवान अपनी महिमा छिपा रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं भक्त बनना चाहता हूँ, और मैं भक्त नहीं हूँ, मैं अभक्त हूँ, मैं मायावादी सन्यासी हूँ, आपका स्पर्श करके मुझे कृष्ण प्रेम की तरंगें उठ रही हैं। तो सार्व भट्टाचार्य जानते थे, इसीलिए मेरे अत्यंत कठोर हृदय को शुद्ध करने के लिए उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। सार्व भट्टाचार्य जानते थे कि मैं बहुत कठोर हृदय वाला हूँ, तो मेरा इलाज कराने के लिए मुझे आपके पास भेजा उन्होंने। मैं अपना इलाज कराने आया हूँ। मैं क्या हूँ? कठोर हृदय वाला मायावादी सन्यासी हूँ, भक्त मैं भक्त नहीं हूँ, तो अपना इलाज कराने के लिए आपके पास आया हूँ, यानी भक्त बनने के लिए, भगवान कह रहे हैं। जाने कठिन मोर हृदय शोधीते सार्वभौम कहिले ने तो मारे मिली थे। इस तरह दोनों एक दूसरे के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। रामानंद राय जो है उनको कह रहे हैं कि आप साक्षात भगवान हैं, और भगवान जो है उनको कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े भक्त हैं और मैं भक्त नहीं हूँ, है ना। और दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। उसी समय एक वैष्णव ब्राह्मण आया, उसने नमस्कार किया, महाप्रभु के सामने दंडवत करके उसने भोजन करने के लिए आमंत्रित किया कि आप मेरे घर में भोजन करिए। महाप्रभु ने ब्राह्मण को भक्त जानकर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और हंसते हुए रामन राय से बोले, क्या बोले, मैं आपसे कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ, मेरा मन चाहता है, अतः मैं आपके दर्शन फिर से करना चाहता हूँ, अभी तो जा रहा हूँ। भगवान बोले, अभी तो जा रहा हूँ कहाँ, इनके घर में भोजन करने, लेकिन मेरी इच्छा है बहुत, क्या इच्छा है, आपके मुख से कृष्ण का वर्णन सुनना है, फिर से मिलना चाहता हूँ। तुम्हार मुखे कृष्ण कथा सुनते है मन, पुनरपि पाए जैन तुम्हारे दर्शन। और रामन राय ने उत्तर दिया, रामन राय ने दूसरी बात बोली, वो उनकी बात का जवाब नहीं देते, बोले हे प्रभु, यद्यपि आप मुझ पतित को पवित्र करने आए हैं किंतु मेरा मन आपको देखने से भी शुद्ध नहीं हुआ है, कृपया 5-7 दिन तक रुकें, तब मेरा मन शुद्ध हो पाएगा। मैं बहुत क्रॉनिक, मेरा क्रॉनिक केस है, तो आपका दर्शन करके सब तो शुद्ध हो जाते हैं, कि मैं शुद्ध नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए आपको मुझे शुद्ध करने के लिए 5-7 दिन और रुकना पड़ेगा, क्रॉनिक डिसीज। नहीं तो दर्शन मात्र से शुद्ध हो गए तो फिर कहे ठीक है, फिर तो जरूरत क्या है रुकने की, नहीं मैं शुद्ध नहीं हुआ। आप तो शुद्ध करने वाले हैं लेकिन मैं शुद्ध नहीं हो रहा हूँ, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा, 5-7 दिन रुकना पड़ेगा। राय कहे आईला जाती पामारे सोधीते, दर्शन मात्र शुद्ध नए मोर दुष्ट चते, देने 5-7 राही का रह मार्जन, तमे शुद्ध है मोर ए दुष्ट मन। यद्यपि दोनों एक दूसरे के विरह को सहन नहीं कर सकते थे, फिर भी रामन राय ने महाप्रभु को नमस्कार किया और वहां से विदा ली। तब चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए जिसने उन्हें आमंत्रित किया था, उन्होंने वहीं भोजन किया। जब संध्या हुई तो रामानंद राय और महाप्रभु दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उत्कंठित हो गए, मिलना है दोनों। अब शाम का स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु बैठकर रामानंद राय से के आने की प्रतीक्षा करने लगे, एकांत में मिलना है, किस लिए, कृष्ण की चर्चा करने के लिए। उसी स्थान में आकर के स्नान किया और बैठ गए कि अब आएंगे कि हाँ चर्चा करेंगे। रामन राय एक नौकर के साथ उनसे मिलने के लिए आए, केवल एक नौकर अपने साथ में लाए और किसी को नहीं। रामन राय ने महाप्रभु के पास आकर सादर नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। फिर भी दोनों एकांत स्थान में कृष्ण की चर्चा करने लगे। नमस्कार कैला राय प्रभु कैला आलिंगन, दुई जने कृष्ण कथा कहे राजस्थाने। अब जो है अनेक प्रश्न होते हैं, इस विषय को मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत लंबा विषय है। चैतन्य महाप्रभु कैसे कैसे प्रश्न करते हैं और राय रामानंद राय जो है और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, इस तरह से बहुत आगे जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु फिर बहुत प्रसन्न हुए, मतलब राधा के प्रेम तक पहुंचा दिया चैतन्य महाप्रभु ने। राय रामानंद से प्रश्न पूछ पूछ करके कहां तक पहुंचा दिया, राधा रानी के प्रेम तक पहुंचा दिया, है ना। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मानव जीवन के लक्ष्य यही सीमा है, केवल आपकी कृपा से मैं समझ सका हूं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं क्या कह रहा हूं ये मैं नहीं जानता। रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं क्या कह रहा हूं ये मैं नहीं जानता, जो भी अच्छा बुरा हो उसे आप ही मुझसे कहलवा रहे हैं, मैं तो केवल दोहराने वाला हूं। राय कहे जय कहाओ सही कही बाणी की कही ये भाल मंद के छुई ना जानी। वास्तव में आप ही मेरे मुंह से बोल रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं, ये बड़ा रहस्य की बात है। जो भी हो कृपा करके उस व्याख्या को सुने जिसे लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। फिर रामानंद राय और भी व्याख्या बताते हैं, उसको मैं छोड़ रहा हूं। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय का आलिंगन किया और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। इस तरह पूरी रात कृष्ण कथा में बीती और सवेरे दोनों अपने अपने कार्यों में चले गए पूरी रात। चैतन्य महाप्रभु से विदा होने के पहले रामन राय ने पृथ्वी पर गिरकर महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और बहुत विनीत भाव से बोले, आप उस पर अपनी अहेतु की कृपा करने के लिए यहाँ आए हैं, अतएव आप यहाँ कम से कम 10 दिन रुकिए और मेरे दूषित मन को शुद्ध कीजिए। 5-7 दिन बोले थे, अभी 10 दिन बोले हैं। 10 दिन रुको, आप 10 दिन रुको, है ना। 10 दिन का मतलब 10 रातें, 10 रात क्या है। आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो सारे जीवों का उद्धार कर सके, केवल आप ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। महाप्रभु उत्तर दिया, मैं आपके गुणों को सुन करके यहाँ आया हूँ। मैं तो आपके पास कृष्ण का गुण सुनने के लिए, इस तरह अपना मन शुद्ध करने के लिए आया हूँ। भगवान जो है अपनी बात बोल रहे हैं, दूसरी बात बोल रहे हैं, मैं अपने मन को शुद्ध करने के लिए आया हूँ आपसे, कृष्ण का गुण सुनने के लिए। प्रभु कहे आए लांग सुने तो मार गुण, कृष्ण का था सोने शुद्ध कर आई ते मन। जिस तरह मैंने आपके बारे में सुना था, उसी तरह मैंने आपकी महिमा देखी है। जहाँ तक राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का संबंध है, आप तो ज्ञान की सीमा है। चैतन्य महाप्रभु का 10 दिन की क्या बात है, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आपका साथ छोड़ पाना मेरे लिए असंभव होगा। 10 दिन की बात नहीं, आप और मैं दोनों साथ साथ जगन्नाथपुरी में रहेंगे। हम एक साथ आनंद में कृष्ण और उनकी लीलाओं की चर्चा करते हुए अपना समय बिताएंगे। इस तरह वे दोनों अपने अपने कामों में चले गए। संध्या समय रामानंद राय फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए। अब दूसरी संध्या, एक रात पूरी बिताई, अब दूसरी संध्या में फिर आए मिले। वे बारंबार मिलते, एकांत स्थान में बैठते और प्रश्नोत्तर के रूप में प्रसन्नचित होकर कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते थे। प्रश्नोत्तर, 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 प्रश्नोत्तर। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते थे, रामानंद राय उत्तर देते थे। इस प्रकार रात भर वे चर्चा में लगे रहते। अब चैतन्य महाप्रभु बड़े अच्छे से प्रश्न किए, इनको जो है मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। उसी दिन संध्या समय कुछ समय तक कृष्ण कथा की चर्चा चलाने के बाद रामानंद राय ने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और बोले, अब सुने बड़े ध्यान से, रामानंद राय ने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए और बोले, राधा और कृष्ण का जो तत्व है, उनका प्रेम रस है, लीलाओं के अनेक दिव्य तत्व हैं। आपने मेरे हृदय में इन तत्वों को प्रकट किया। नारायण ने इसी तरह ब्रह्मा जी को शिक्षा दी थी। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कैसे शिक्षा दी थी बताया नहीं था। तेने ब्रह्म हृदय, वेदों का ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर दिया, ऐसे आपने मुझे। अब मैं आपको सुना रहा हूँ, वो तो कहने के लिए कि मैं आपको सुना रहा हूँ, आप मेरे हृदय में वो ज्ञान प्रकट कर रहे हैं जैसे भगवान नारायण ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रकट कर दिया था। परमात्मा हर एक हृदय के भीतर से बोलते हैं, बाहर से नहीं। वे सभी प्रकार से भक्तों को उपदेश देते हैं, यही उनकी उपदेश विधि है। तब रामन राय ने कहा कि अब मेरे हृदय में एक संशय बचा है, आप मुझ पर कृपालु हो और मेरे संशय को दूर कीजिए। आपने तो मुझसे बहुत से प्रश्न किए और मैंने उत्तर दिया आपकी कृपा से ही, लेकिन अब मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप दीजिए, मेरा एक संशय है उसको आप दूर करिए, आप बताएं। पहले मैंने आपको सन्यासी के रूप में देखा, क्या देखा, सन्यासी के रूप में देखा, किंतु अब मैं आपको एक गोपाल बालक श्याम सुंदर के रूप में देख रहा हूँ। अब ये बताओ ये सब रहस्य क्या है, ये बताइए। पहले मैंने आपको सन्यासी के रूप में देखा था, अभी मैं देख रहा हूँ एक गोपाल श्याम सुंदर के रूप में देख रहा हूँ।
पहले देखी नु तुमार सन्यासी स्वरूप है, ए बे तो माँ देखे मो श्याम गोप रूप है।
अब मैं आपको सुनहरे मूर्ति के रूप में देख रहा हूँ, आपका पूरा शरीर सुनहरी कांति से आच्छादित प्रतीत हो रहा है। फिर ये तीसरा आश्चर्य, पहला आश्चर्य आपको देखा सन्यासी के रूप में, दूसरा आश्चर्य श्याम सुंदर गोप बालक के रूप में, फिर तीसरा आश्चर्य चारों तरफ सोनेली कांति है आपके। ये क्या बात है।
तुम्हारे सामुख के देखी कांचन ने पंचालिका, तारे गौर कांति तुम्हार सर्व अंग ढाका।
मैं देख रहा हूँ आपके मुख में बंसी है और आपके नेत्रों नेत्र विभिन्न भावों के कारण चंचल हो रहे हैं। आपके मुख में बंसी देख रहा हूँ मैं आपको वास्तव में इसी रूप में देख रहा हूँ। अत्यंत अद्भुत है हे प्रभु, निष्कपट भाव से बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। आप तो मेरे साथ कपट ही कपट कर रहे हैं कि मैं मायावादी सन्यासी हूँ, कठोर हृदय वाला हूँ, भक्त बनने के लिए आया हूँ, हैं कपट ही कपट किया है। अब एक बात तो बताओ कपट छोड़ करके हैं सच बात क्या है।
हे मत तो माँ देखी हाय चमत्कार है, अकपट का है प्रभु कारण इहार है।
चैतन्य महाप्रभु उत्तर दिया आप में कृष्ण के प्रति प्रेम है तो इसी कारण से चर चर हर वस्तु में आप भगवान देखते हैं। फिर से कपट कर रहे हैं हाँ? नहीं नहीं आपके ही हृदय में प्रेम है इसलिए आप हर चीज दिखाई दे रही है आपको हाँ?
महान भक्त चर अचर को देखता है हाँ? बाहरी रूप नहीं देखता, वो जहां भी देखता है तुरंत भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है हुँ? कोई कपट, अब फिर भी वही कपट बोल रहे हैं
राय राम। रामण उत्तर दिया है प्रभु कृपया आप इन गंभीर बातों को छोड़िए,
ये भी तो बड़े चालाक हैं, उन्होंने बात नहीं सुनी, बोले इन बातों को छोड़िए आप
कृपया आप मुझसे अपना असली रूप मत छिपाइए,
आप छिपावा छिपावा मत करो
राय कहे प्रभु तुम्हें छाड़ भार भूरी, मोरे आगे ने जरूर ना करी है चोरी।
अब चोरी मत करो मेरे सामने, अपने अपने रूप की चोरी मत करो।
अपने रूप की चोरी कर रहे हैं आप मेरे सामने, मैं आपका रूप देख रहा हूँ और आप उसको चुरा रहे हैं।
नहीं 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 वो तो आपकी आंखों में है, आपका प्रेम है, ये सब बोल रहे हैं।
राय रमन ने कहा हे प्रभु मैं जानता हूँ कि आपने श्रीमती राधा रानी का भाव और उनका रंग स्वीकार कर रखा है, इस तरह आप अपने दिव्य रस का आस्वादन कर रहे हैं, इस तरह चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे प्रभु आप अपने निजी कारणों से चैतन्य महाप्रभु के इस रूप में अवतरित होकर प्रकट हुए, आप अपने स्वयं के आनंद का स्वतन करने के लिए आए हैं, साथ ही साथ भगवत प्रेम का प्रसार करके सारे जगत का उद्धार करने आए हैं। हे प्रभु आप मुझे मुक्ति प्रदान करने के लिए अपने हेतु की कृपा से मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं, अब लेकिन आप छल कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार का क्या कारण है। ये छल भी करते हैं, कृपा भी कर रहे हैं, छल भी कर रहे हैं मेरे साथ, इसका क्या कारण।
अपन आई ले मोरे कारी ते उद्धार, ए बेका पट कर तुम्हार को न व्यवहार।
तो चैतन्य महाप्रभु उस समय कुछ बोले तो नहीं, लेकिन क्या देखा।
तबे हंसे तारे प्रभु देखा इन स्वरूप है,
तो हंसे और अपना स्वरूप दिखाया, क्या
रसराज महाभाव दोई एक रूप है।
रसराज यानी कृष्ण और महाभाव राधा रानी दोनों एक रूप हो गए, दिखाया हंस करके, बोले कुछ नहीं लेकिन दिखाया।
वो स्वरूप देखकर रामन राय दिव्य आनंद के कारण मूर्छित हो गए, खड़े नहीं रह सके, भूमि पर गिर गए।
देखी रामानंद हैला आनंदे मूर्छिते, धरिते न पारे ते पाड़ीला भूमि ते।
जब रामानंद राय मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके हाथ का स्पर्श किया जिसे उन्हें तुरंत चेतना प्राप्त हो गई, किंतु जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी वेश में देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए।
फिर से सन्यासी
रावण राय का आलिंगन करने के बाद महाप्रभु ने उन्हें सांत्वना दी और बताया आपके अतिरिक्त अन्य किसी ने ये स्वरूप नहीं देखा है। अब कपट छोड़ करके बात बताई, क्या कहा, आपके अतिरिक्त और किसी अन्य ने ये स्वरूप नहीं देखा है। आलिंगन कार्य प्रभु कैल आश्वासन तो माँ बिना ए रूप न देखे अन्य जन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरी लीलाओं और रसों का सारा तत्व तो आपको ज्ञात है, इसीलिए मैंने आपको यह स्वरूप दिखलाया है। वास्तव में मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, ये तो श्रीमती राधा रानी के शरीर का स्पर्श करने से दिखाई दे रहा है, किंतु राधा रानी नंद महाराज के पुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी का स्पर्श नहीं करती हैं। अब मैंने अपने शरीर और मन को श्रीमती राधा के भाव में रंग लिया है, इस तरह मैं अपने माधुर्य का आस्वादन उस रूप में कर रहा हूं। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने शुद्ध भक्त रामानंद राय के समक्ष स्वीकार किया, अब ऐसा कोई गुप्त कार्य नहीं है जो आपसे अज्ञात हो, यद्यपि मैं अपने कार्यों को गुप्त रखने की चेष्टा करता हूँ, फिर भी आप मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण प्रत्येक बात को विस्तार से समझ लेते हो। मैं जितना छिपाऊँ इन्हें मैं छिप नहीं पाता हूँ कि तुम्हारा प्रेम है। भगवान कह रहे हैं कि तुम प्रेम की शक्ति से तुम मुझे जान रहे हो, जबकि मैं अपने को छिपाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरी शक्ति उतनी नहीं है, छिपने की शक्ति नहीं मेरे पास, भगवान कह रहे हैं। तब महाप्रभु ने रामानंद राय से अनुरोध किया इन सारी बातों को गुप्त रखना, कहीं प्रकट नहीं करना, जो कि मेरे कार्य पागल जैसे दिखाई देते हैं, अतः लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए ये नहीं बताना। जब तक मेरा अवतार है तब तक ये रहस्य नहीं बता रहा। अब तो हम लोग बताते हैं, सुनते हैं, है ना, लेकिन अवतार काल में भगवान मना करते हैं, जब तक मेरा अवतार है तब तक किसी को नहीं बताना। गुप्त राखी है कहा ना कारी ऊपर है हमारे बात चेष्टा लोग के ऊपर हास है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं सचमुच एक पागल व्यक्ति हूँ और आप भी पागल हैं, अतः हम दोनों पागल हैं, भगवान कह रहे हैं तुम भी पागल मैं भी पागल हम दोनों पागल। हमें एक बातुल तुम्हें द्वितीय बातुल अतएव तुम्हें आमय है ये समय तुल, इसलिए हम दोनों समान हैं, पागल और पागल दोनों बराबर होते हैं, हम दोनों पागल हैं, हम दोनों बराबर हैं, भगवान कह रहे हैं। इस तरह चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय ने कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते हुए सुखपूर्वक 10 रातें बिताई, 10 रातें। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के बीच में हुई वार्ताएं अत्यंत गुण हैं, राधा कृष्ण के माधुर प्रेम से संबंधित हैं, यद्यपि दोनों ने लीलाओं पर विस्तार से बातें की किंतु वे उनका पार नहीं पा सके, पार नहीं मिला, कितना अपार है राधा कृष्ण का गुण। ये वार्ताएं विशाल खान के समान है, जहाँ पर एक ही स्थान से सभी तरह की धातुएं निकलती हैं, तांबा कांसा चांदी सोना। चैतन्य महापुरुष रामानंद राय ने एक से एक उत्तम धातुओं को निकालने वाले खनन का काम किया, उनके प्रश्न उत्तर बिल्कुल इसी प्रकार के हैं। अगले दिन चैतन्य महापुरुष ने प्रस्थान करने के लिए रामानंद राय से अनुमति मांगी, विदा होते समय महापुरुष ने राय को आज्ञा दी आप सारे भौतिक कार्यकलाप छोड़कर जगन्नाथपुरी में जाओ, मैं अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करके वहाँ लौट जाऊँगा। भगवान ने कहा हम दोनों जगन्नाथपुरी में मिलकर रहेंगे और कृष्ण कथा कहते हुए सुखपूर्वक अपना समय बिताएंगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय का आलिंगन किया और उन्हें उनके घर भेजकर वे स्वयं विश्राम करने लगे। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के विरह में बेहवल होटे अपने सारे भौतिक कार्यकलाप त्याग कर महाप्रभु के ध्यान में मग्न रहने लगे। अब उनसे कुछ काम होता नहीं, मंत्री का काम अब नहीं कर पाते हैं। मैंने चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के मिलन का संक्षेप में वर्णन किया है, इसका पूरे विस्तार से वर्णन कर पाना संभव नहीं है, यहाँ तक कि 1000 मुख वाले शेष नाग भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। क्या रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु का संवाद, संक्षेपे कही लो रामानंदे रे मेलन विस्तारी वर्णित नारे सहस्त्र बदन। चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप गाढ़े दूध के समान है और रामानंद राय के कार्यकलाप मिस्त्री के समान है। उनका मिलन गाढ़े दूध और मिस्त्री के मिश्रण के समान है। जब वे राधा कृष्ण की लीलाओं के विषय में बातें करते हैं तो मानो उसमें कपूर मिल गया। जो व्यक्ति इस मिश्रित व्यंजन का स्वाद चखता है वो परम भाग्यशाली है। इस अद्भुत व्यंजन को कानों से ग्रहण करना होता है, जो इसे ग्रहण करता है वो इसका और अधिक आस्वादन करने के लिए लालायित हो जाता है। रामन राय और चैतन्य महाप्रभु की वार्ताओं को सुनकर राधा कृष्ण लीलाओं के रसों का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इससे राधा और कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनन्य प्रेम विकसित हो सकता है। लेखक का हर पाठक से यही अनुरोध है कि इन वार्ताओं को श्रद्धापूर्वक बिना तर्क किए सुने। इस तरह से अध्ययन करने पर ही वो चैतन्य महाप्रभु के गूढ़ तत्व को समझ सकेगा। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में से ये लीला परम गोपनीय है। मनुष्य केवल श्रद्धा से तुरंत लाभ पा सकता है, अन्यथा तर्क करने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु के चरण कमलों को सब कुछ मान रखा है, वही इस दिव्य खजाने को प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण चार सर्व सतार मिले धन। मैं श्री रामानंद राय के चरण कमलों में 1 करोड़ बार नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज कर रहे हैं। रामानंद राय के चरण कमलों में मैं 1 करोड़ बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके मुख से प्रचुर ज्ञान का विस्तार किया। रामानंद राय मोर कोटि नमस्कार है, जार मुख्य कैला प्रभु रसे विस्तार है। मैंने स्वरूप दामोदर के गुटकों के अनुसार चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की मिलन लीलाओं का वर्णन किया है। श्री रूप और श्री रघुनाथ दास के चरण कमलों पर प्रार्थना करते, उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चरणों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। श्री रूप रघुनाथ पादे जा रहे आस है, चैतन्य चरितामृत का एक कृष्ण दास है। तो ये हमने ये बड़ी सुंदर कथा सुनी, रामानंद राय का चैतन्य महाप्रभु से मिलन, है ना। तो ये जो है रामानंद राय को अर्जुन का भी अवतार कहा जाता है। अर्जुन की अवतार है तो इस लीला में भगवान प्रश्न पूछते हैं और अर्जुन उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो एक गीता है जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं, और ये दूसरी गीता है जिसमें कृष्ण प्रश्न पूछते हैं अर्जुन उत्तर देते हैं, है ना। इस लीला में अर्जुन जो है बन गए हैं क्या, मोहित हैं, भ्रमित हैं, मुझे उपदेश दीजिए। और इस लीला में भगवान उसी प्रकार से बन गए हैं कि मैं अभक्त हूँ, कठोर हृदय वाला हूँ, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, हैं। तो वही लीला है, लेकिन इस बार जो है कृष्ण अर्जुन से ज्ञान प्राप्त करते हैं, हैं। तो ये दूसरी गीता है ना, जो चैतन्य चरितामृत में वर्णित है और बहुत विस्तृत वर्णन है इसमें। धन्यवाद। श्री रमन राय तरोय तुर भावतिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभु भाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय हो।